ओम शांति। बाईस नंबर के रजिस्टर में 110 पेज पर 23 चार नवासी का प्राकृत लग रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। बेटा नहीं, वो आते ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। माना मांगने की दरकार रूहानी बाप से नहीं है। आते ही विश्व का मालिक बनाने, कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते, डायरेक्शन देते रहते हैं। डायरेक्शन कब तक देते रहते हैं? इस बात के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं। आते किस लिए? विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है वो सब कुछ डायरेक्शन देते रहते हैं। कब तक? जब तक विश्व के मालिक न बने। तो दाता है ना, तो सब आते ही देते हैं। उनसे कहने की दरकार नहीं, मांगने से मरना भला। तो बाबा से भी ना मांगो, जब वो आते ही सब कुछ देते हैं तो मांगने की दरकार नहीं रहती। हिसाब बना हुआ है, जो जितना जैसा पुरुषार्थ करेगा उसको आते ही मिलेगा। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति दो, आशीर्वाद दो, कृपा करो, कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक करके सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए। मांगने वाले का सर नीचा हो जाता है और हाथ फैल जाता है। अभी तुमको मांगने की कोई दरकार नहीं। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो, मांगते कौन है फिर? जो डायरेक्शन पर नहीं चलते तो कुछ कृपा मांगते। एक तरफ अवज्ञा भी करते और दूसरी तरफ कृपा भी मांगते हैं। एक तो कहते हैं बीसी को कभी सिमरो नहीं, किताबो नहीं, बीसी को बीसी। ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया उसका विचार नहीं करो। रिपीट में करो। बाप तो सिर्फ दो अक्षर ही कहते हैं, मां में कम याद करो। और कुछ करने की भी बात नहीं जाए। ये नहीं कहते सिर्फ मुझे याद करो, याद करो नहीं, लेकिन नाम एकम याद करो।
کیا مطلب؟
مجھے ایک بندو کو یاد کرو، بندو بندو آتما ہے تو سب ایک جیسی، تو کیسے پتا چلے کون سی مام ایکم کون سی؟ مجھے ایک بندو کو یاد کر، کچھ پتا لگے گا، معلوم پڑے گا کہ کون سی بندو کے لیے کہا جا رہا ہے، کیسے پتا لگے گا؟ مام ایکم کا پتا کیسے لگے گا؟ جب شریر میں آئے تب ہی تو پتا لگے گا کہ نام ایکم یاد کرو، نہیں تو اس ایک بندی کا کیسے پتا کرے؟ 500-600 کروڑ منشیا آتماؤں کی بندی سب ایک جیسی، کوئی استھول پرکاش نکلتا ہے کیا؟ استھول سوری تو نہیں ہے جو استھول پرکاش نکلے، یہ تو گیان کا پرکاش ہے جو ارجن نے کہا ہم سہن نہیں کر سکتے، اتنا تیکھا گیان سنایا، تیکھی گیان کی لائٹ دی، تو شریر میں آ کر کے ہی دیں گے نا، تو مان ایکم کا مطلب کیا ہوا؟ بندی کو یاد کرو، صرف بندی کو یاد کرو کہ کہنے والا کوئی سوروپ ہے جس کے جس مخ سے کہہ رہا ہے، میں اس سن میں آ کر کے کہتا ہوں مان ایکم یاد کرو، باپ ڈائریکشن اتوا قیمت دیتے ہیں اس پر چلنا بچوں کا کام ہے، یہ شیش مت ہے کہ مجھے ایک کو یاد کرو کوئی دوجم یاد نہ کرو، بچی نے تو سرویاپی بتا دیا کہ وہ سب میں ہے، تو انیک کو یاد کرنے لگ پڑتے ہیں، انیکوں کو یاد کرنے سے بھی بیچاری یاد ہو جاتی، سب شکتی چھ ہوتی رہتی، ابھی باپ بتاتے ہیں ماں ایکم یاد کرو، یہ ہے فیس ٹو فیس فیس ڈائریکشن، کیا اس سے بڑھ کر کے فیس ڈائریکشن اور کوئی ہوتا نہیں ہے کیا؟ کہ مجھے ایک کو یاد کرو، اس ڈائریکشن کو ابھی تک 50-55 سال ہو گئے، فالو نہیں کیا کیا بچوں نے؟ اس فریش ڈائریکشن کو پکڑا نہیں کیا ہے؟ پکڑا پکڑا یا نہیں پکڑا؟ پکڑا، مجھے ایک کو یاد کیا، کس صرف بندو کو یاد کیا؟ اگر صرف بندو کو یاد کیا تو بندو بندو سب آتما ایک جیسی، کیڑے مکوڑے پشو پکشی سب کی آتما سب بندو، کس بندو کو یاد کیا؟ کیسے پتا چلا آپ کو کہ ہم نے مان ایکم بندو کو یاد کیا؟ جو بندو کہہ رہا ہے، جو آتما کہنے والی ہے کہ مجھے ایک کو یاد کرو، اس کا کیا پروف کہ آپ نے اس ایک بندو کو ہی یاد کیا؟ کوئی پروف؟ لیکن تب کیا کریں؟ تب آتی ہے بات کہ مان ایکم وہ کہنے والا کون جس نے کہا کہ میں وشو کی بادشاہی دیتا ہوں؟ آتے ہی ہیں وشو کی بادشاہی دینے اور ڈائریکشن دیتے ہی رہتے ہیں، کب تک؟ جب تک وشو کی بادشاہی پوری نہ ملے، 500 کروڑ کے اوپر کنٹرولنگ پاور جب تک نہ ملے تب تک ڈائریکشن دیتے ہی رہتے ہیں، تو سسٹم دوارا ڈائریکشن دیتے ہیں، کیا کہیں برہما کے تن دوارا، دادا لکھ رہا ہے اس کے دوارا، اگر اس سوروپ کے دوارا ڈائریکشن دینے کی بات ہوتی تو وشو کی بادشاہی تو ابھی کسی کو ملی، विश्व की बादशाही माना राम राज्य, और राम राज्य भी है नहीं, क्या है फिर भी रावण राज्य। तो वो एक स्वरूप चाहिए, जिस स्वरूप से बाप डायरेक्शन देते हैं, वो निराकार और साकार का मेल, जिसको मुरली में बताया कि निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप है सुप्रीम सोल, वो बाबा नहीं है, वो क्या है, है? वो क्या है, वो बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, ग्रैंडफादर नहीं है। दूसरे संबंध तब बनते हैं जब शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जिस शरीर में प्रवेश करके विश्व की बाध्यता ही देते हैं, हमको साथ में वापस ले जाते हैं और स्वर्ग में भेज देते हैं। और स्वर्ग में ले जाते हैं, ऐसे भी बात की बोले हुए, तो ले जाने वाला बाप कौन सा हुआ और भेजने वाला बाप कौन सा हुआ। अब यहाँ पर दो बिंदी अलग अलग हो गई, भेजने वाला सुप्रीम सोल बाप और ले जाने वाला साकार में, वो साकार जो निराकार बाप की सारी ही शक्तियों को ग्रहण कर लेता है, इसलिए बोधि शिव बाबा कहा जाता अंत में। इसलिए मुरली ने बोला, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो क्या सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, नहीं। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करके उसे आप संबंध बना देता है, सर्वशक्तिवान बाप की मास्टर सर्वशक्तिवान औलाद बन जाता है, उसके लिए बोला कि सदा शक्ति पर कायम है, ऑलराउंड पार्टधारी। तो सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन है माने एकम, याद करो, जो ऊंचे ऊंचे हैं, उससे ऊंचा पार्टधारी और कोई होता नहीं। ऊंचा पार्टधारी कौन होता है, हीरो। ब्राह्मण में सबसे ऊंचा पाठधारी हीरो, उससे ऊंचा तो कोई पाठधारी होता ही नहीं। तो ऊंच से ऊंच को याद करेंगे तो क्या बनेंगे, ऊंच से ऊंच बनेंगे। लेकिन वो एक है, कोई दूसरा, दूसरा नहीं है उसे जैसा। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो दो अक्षर ही समझाएंगे, माम एकम याद करो, मैं हूं पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या, बाबा को याद करना है, कोई रेडी मारनी बस चिल्लाना तो नहीं है, अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है, दूसरा डायरेक्शन क्यों देते हैं और क्या देते हैं। पहला पहला डायरेक्शन तो हुआ मां लेकर याद करो, वो तो हुआ सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन, और दूसरा डायरेक्शन दूसरा डायरेक्शन देते हैं अपने आप को याद करो, यानी अपने आप के 84 के चक्र को याद करो कि मैं आत्मा कौन और क्या क्या पार्ट बजाने वाली हूँ, ताकि अपनी आत्मा के स्वरूप की स्मृति आए। क्योंकि जो पार्टधारी है अगर उसको अपने पार्ट का ही पता नहीं तो पार्टधारी कैसा हुआ, होशियार हुआ या बेवकूफ हुआ, तब तक तो बेवकूफ हुआ। तो बाप बेसमझ को समझदार बनाने के लिए आती है, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है, क्या बनना है? देवता कितने जन्म लेने वाले होते हैं? 83 जन्म लेने वाला देवता नहीं बनना, वो तो कंप्लीट देवता है नहीं है। क्लास में बच्चे के रोने का आवाज हुआ, अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए। बेसिक नॉलेज है ना, तो बेसिक नॉलेज में नॉलेज भी हद की तो बच्चे भी हद के, तो कैसे बच्चों को ना लेकर के आए? जो हद के छोटे बच्चे हैं उनको कोई लेकर ना आए, और यहाँ तो कभी डायरेक्शन दिया नहीं जाता कि छोटे बच्चों को लेकर ना आए, क्योंकि यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे? जो यज्ञ में पहले हो चुके हैं वो बच्चे तो यज्ञ में आएंगे, तो उनको अगर ना कर दिया जाएगा तो उनको बाप का प्यार कैसे मिलेगा? तो इस डायरेक्शन के लिए क्या किया जाए? बाबा ने ये डायरेक्शन दिया है कि बच्चों को कोई लेकर ना आए, और आप यहाँ छोटे बच्चों को लेकर आते हैं और कोई मना नहीं करता, तो श्रीमत के वर्खिलाफ हुआ या डायरेक्शन के अनुकूल चलना है? तो यहाँ नॉलेज है बेहद की, हद की नॉलेज नहीं है, हद के बच्चे भी नहीं है। छोटे बच्चे एक होते हैं हद के, और एक छोटे बच्चे होते हैं बेहद के। बेहद के कैसे होते हैं? हाँ, जो पूरी नॉलेज को न समझे उन बेहद के छोटे बच्चों को यहाँ बाबा के पास नहीं लाना। बाकी इन छोटे छोटे बच्चों की बात नहीं है, तो छोटे बच्चों को कोई लेकर ना आए, उन्हों का कोई प्रबंध करना है। क्या उन छोटे बच्चों का कोई और प्रबंध करना है, बाकी यहाँ बाबा के सामने नहीं लाना। बाप से जिनों को वर्षा लेना होगा वो आपे ही प्रबंध करेंगे। नहीं लेना होगा तो प्रबंध भी नहीं करेंगे। तो दिया मुझे मुरली कट हो गई क्या? बात क्या चल रही थी इससे पहले? 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। मुरली कट नहीं हो गई, बाबा की वाणी कभी बीच में प्रसंग कट नहीं होता। ये बात कहना रंग है कि बाबा कभी खेत की बात करता है, कभी खलिहान की बात करता है। बाबा तो सागर है, उसकी तो लहरें हैं। अभी अभी क्या बात कर रहे थे, अभी अभी क्या बात शुरू कर दी? ऐसे प्रसंगांतर से बात करने वाले तो करिए खड़िए होते। बाबा कभी प्रसंग तोड़ करके बात नहीं करता, बाबा की तो धारा प्रवाह से बात चलती है। बात चल रही थी देवता बनने की। तुमको देवता बनना है, देवता मन पूरे 84 का ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। तो जो कम जन्मों का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो बच्चा बुद्धि है या कंप्लीट बात के बच्चे हैं? वो क्या हुए? बच्चा बुद्धि। तो बच्चा बुद्धि को पढ़ाने वाले टीचर्स और होते हैं, और जो शुद्ध बुद्धि हो जाते हैं, मैच्योर्ड बुद्धि बच्चे हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, उनको पढ़ाने वाला टीचर और होता है। तो छोटे छोटे बच्चों का कोई और प्रबंध करना, मतलब बाबा नहीं पढ़ाएगा उनको,
क्या मतलब हुआ? उन छोटे छोटे बच्चों को, जो बेहद के छोटे बच्चे, माने जिनको बाप का परिचय दिया जाता है और उनकी बुद्धि में बाप का परिचय बैठता नहीं है, ये एडवांस नॉलेज जिनकी बुद्धि में नहीं बैठती है, उनको बाप के सामने नहीं लाना, उनका कोई और प्रबंध करना है, यानी कोई और बाप है। नंबर वार ऊंच के ऊंच बाप से वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने लायक नहीं है, उनको बाप के सामने नहीं लाना, जिनको जिनके सामने ले जाना है उनका कोई और प्रबंध करना है, माने कोई और निकलेंगे जो उनको पढ़ाई पढ़ाएंगे, और अपनी कैटेगरी में अपने गार्डन में ले जाने लायक बनाएंगे। और धर्म पिता है और दूसरे नहीं है क्या? एक ही धर्म पिता है, उनसे ऊंचे और धर्म पिता नहीं है क्या? उनके आधार मूल और उनके बीज रूप वो दूसरे नहीं है क्या? हाँ कल्याण होना है तो ये कहाँ कह रहा है कल्याण नहीं होना है, लेकिन 84 जन्म लेने वाले तो नहीं है, वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले तो नहीं है। जब ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले ही नहीं है तो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ेंगे क्या? आप उनको जबरदस्ती ला करके बैठा भी देंगे तो भी क्या होगा, वो बीच में पढ़ाई पढ़ के छोड़ देंगे? पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। तो उनका कोई और प्रबंध करना है। अब जिनको वर्षा लेना होगा वो आप ही प्रबंध करेंगे, जिनको वर्षा ही नहीं लेना होगा तो ऐसे ही बच्चों को, ना समझ बच्चों को बाप के सामने लाके बैठा देंगे। क्या कहा? जिनों को वर्षा लेना होगा वो तो अपने आप प्रबंध करेंगे, ऐसे ही बच्चों का बच्चा बुद्धि होगा, और वर्षा ही नहीं लेना होगा तो ऐरा गहरा लट्ठू गहरा जैसे भी बच्चे मिलेंगे बाबा के सामने लाते रहेंगे। तो मतलब बाबा का क्या है कि जो बाप को पहचानने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को, समझदार बच्चों को बाबा के सामने लाना है, जो बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बुद्धि नहीं, उन बच्चों को बाप के सामने नहीं लाना। जब तक निश्चय पत्र लिख करके न देवे, त्रिमूर्ति के चित्र पर ही पहले समझाओ, त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरी बात समझा दो, सामान्य नॉलेज भी दे दो और फिर विशेष बाप की नॉलेज भी दो। सामान्य नॉलेज में क्या बात कि त्रिमूर्ति में बाप कौन है? तीन मूर्तियां हैं, ये बाप का वर्षा है विष्णु, ये ब्रह्मा की मूर्ति है, इसके द्वारा वर्षा मिलता है, और देने वाला कौन है? वो कौन सी मूर्ति है जो वर्षा देने वाला है? ये ब्रह्मा भी लेने वाला है त्रिमूर्ति में, इसको भी देने वाला, ज्ञान का वर्षा भी देने वाला वो ही है, और प्रैक्टिकल में भी वर्षा देने वाला वो ही है, तो वो कौन सी मूर्ति? तो उनको ये सामान्य नॉलेज भी दो। वो कहेंगे शंकर का पास नहीं है, तो भी उसको समझाना है कि पास तो परमेंद्रियों से बजाया जाता है, शंकर को तो ध्यान में बैठे दिखाया जाता है, उसको पास बजाने की दरकार है? याद कहीं विश्व की बात का ही तुम बच्चे लेते हो, तो जिसमें इतनी पावर हो, मन इतना सशक्त हो, एकाग्र हो कि विश्व की बाधता ही मन की एकाग्रता से ही ले सकता है, तो उसको दूसरे धंधे में पड़ने की क्या दरकार? दरकार रहेगी? तुम याद के बल से विश्व की बाधता ही ले लेते हो। तो ये बात समझानी है कि बाप का सामान्य परिचय जब उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, वो शंकर के पास कोई नहीं मानता, तो फिर आगे समझाने की दरकार नहीं है। ये सामान्य परिचय अगर उसकी बुद्धि में बैठता है कि हाँ शंकर का भी कोई रोल है, बल कर्मेंद्रियों से रोल नहीं है, इसलिए चित्र में उसको सिर्फ याद में बैठते हुए दिखाया गया, वो कोई पार्ट नहीं हुआ, रंगमंच पर पार्ट तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है, तो जब सामान्य नाली की बुद्धि में बैठ जाए तब विशेष नाली की विशेष नॉलेज क्या? कि वो पायसधारी ब्राह्मणों की दुनिया में जनेऊधारी वो ब्राह्मण कौन है? मुरलियों ने उसके क्या क्या प्रूफ है? अगस्तवालियों ने उसके क्या क्या प्रूफ दिए हैं? वो बात सुनो। जब पूरी बात बुद्धि में बैठ जाए और कुछ को निश्चय हो जाए, निश्चय पत्र लिख करके दे दे, ये भी मुरली में बोला, सब बाबा के सामने ले आओ। नहीं तो क्या समझो, ये बच्चा बुद्धि है। बच्चे को बाप के सामने ले जाने का डायरेक्शन नहीं। तो ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं है। जो समझदार ही नहीं, छोटे बच्चे माने ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले होंगे, वो बड़े बच्चे होंगे 84 जन्म लेने वाले, और जो कम जन्म लेने वाले होंगे वो रूहानी बच्चे। रूह तो हैं, लेकिन बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे हैं ना। जो बड़ा होगा बड़ा काम करेगा, छोटा होगा छोटा काम करेगा, छोटा पार्ट बजाएगा। ब्राह्मणी का काम है सर्व से वो लायक जब बने तब उन्हें उनको रिफ्रेश करने के लिए ले आना। क्या तब तक उनको रिफ्रेश करने के लिए बाबा के सामने नहीं लाना? ये भी देखना होता है कि कैसे पता चले कि ये लायक बना है या नहीं बना है। मान लो कोई झूठी बोलने लगे कि हाँ हमारी समझ में आ गया, लो हम लिख करके देते हैं। लिख के देने में क्या बड़ी बात, खून से भी लिख करके दे देते हैं तो फिर कैसे फर्क होगे? मान लो किसी ने ऐसे ही झूठ ही लिख के दे दिया, तब क्या करेंगे? आपको निश्चय दिलाने के लिए खट से उसने थोड़ा सा चाकू काटा और खून निकाला और खून से लिख के दे दिया, आप कहेंगे ये तो बहुत पक्का निश्चय दे दिया। तो क्या इससे पक्का निश्चय भी हो जाएगा साबित? नहीं। तो क्या आप पहचान बताए? जो निश्चय बुद्धि होगी आत्मा, वो दूसरों की सेवा जरूर करने लग पड़ेगी, दूसरों को भी बाप का परिचय देने लग पड़ेगी सर्व से बुद्धि। तो सर्व से पता पड़ जाएगा कि ये निश्चय बुद्धि है अथवा नहीं। तो ब्राह्मणी का काम है सर्व से वो लायक जब बने तो उनको रिफ्रेश करने के लिए बाबा के सामने ले आना। कोई भी बड़ा आदमी हो बस छोटा हो, ऐसे नहीं कलेक्टर और मिनिस्टर निकल पड़े, कोई बड़ा नेता निकल पड़ा है, कोई बड़ा डॉक्टर या दुनिया भी नहीं से कोई बड़ा निकल पड़ा, तो उसने समझा हो या ना समझा हो बस उसको बाबा के सामने ले आए। नहीं, बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ बच्चों को जो ले आते ये नहीं समझते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में छोटे बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? ये देखा कोई यूनिवर्सिटी में कोई छोटा बच्चा पढ़ता हुआ देखा किसी ने? नहीं। बात जो बड़े समझदार हो जाते हैं, नीचे स्तर की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, वो तो आकर के पढ़ते हैं। मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए, कच्चे कच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे। क्या कहा तुमको? उनका कल्याण कैसे होगा? और उनको ले आ तेल का भी कल्याण हो जाए तो क्या करेंगे? बाप को तो चिंता नहीं है कि ये डिस्टर्बेंस करेंगे तो बाप का कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन डिस्टर्बेंस किसको करेंगे? लाने वाले को ही डिस्टर्ब करेंगे, औरों को भी, असंगी साथियों को भी डिस्टर्ब करेंगे, तो उसका बोझा किसके ऊपर चढ़ेगा? लाने वाले के ऊपर बोझा चढ़ेगा। क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। आएंगे इस शिष्य के शिष्य सत्संग में, संगठन में, और उनको बाप के ऊपर निश्चय नहीं है तो बुद्धि कहां भटकेगी? इधर उधर गुरुओं के पास बुद्धि भटकेगी, क्योंकि खुद तो निर्णय कर नहीं सकेंगे कोई बात का, तो वो वाइब्रेशन को बांधने वाले नहीं होंगे, वो वायुमंडल को दूषित करेंगे, नुकसान कर देंगे, याद में रहने सके। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है, ऐसे नहीं समझना कि बाबा का नुकसान होगा, चलो ले चलो, बाबा जाने बाबा का काम जाने, बाबा के बच्चे तो सब है, कोई तो जानते ही नहीं है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। क्या बनना है? मनुष्य से देवता बनना, और देवता भी कच्चा बनना है या पक्का? पक्का देवता वो होते हैं 84 जन्म लेने वाले, बाकी तो देवता देवता होते ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाप कहते हैं वन गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो, सिर्फ एक सप्ताह तो क्या, 3-4 दिन भी काफी है, नानी तो बहुत है। बाप को पहचानना है, बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बात है। 22 नंबर के रजिस्टर में 110 पेज पर 23-4 नवासी का प्रातक लग, पहले पेज का मध्यान, बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। अगर नहीं पहचाना, मान लो किसी ने पहचाने ही नहीं है और उसको उठा के ले आए क्लास में बाबा के, तो क्या रिजल्ट होगा? उसको बेहद का 84 जन्म का वर्षा नहीं मिलेगा, फिर भी वो वापस लौट जाएगा हद के बापों के पास। उसका जिस धर्म पिता से जो कनेक्शन होगा पूर्व जन्मों का, वही वापस लौट जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कौन सा वर्षा? बेहद की बात सही का वर्षा। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है, क्या वहाँ बाप नहीं होता है? कहाँ? यहाँ ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी खोल के बैठते हो, हमारी कोई स्कूल जड़ प्रदर्शनी तो है ही नहीं, तो ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी खोल के बैठते हो तो वहाँ कोई बाप नहीं होता है? या म्यूजियम जहाँ खोल के बैठे हो जड़ चित्रों का नहीं, चैतन्य चित्रों का जहाँ संगठन इकट्ठा किया है, वहाँ भी कोई बाप नहीं होता है? लेकिन ऐसे नहीं समझना कि वहाँ बाप नहीं होता है तो वहाँ कोई सर्विस नहीं होती, सर्विस तो वहाँ भी होती है, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। वहाँ क्या बनता है? प्रजा, ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग भरपूर हो जाना चाहिए, परंतु बाप है साधारण तन में, और पढ़ाते भी साधारण रीति है, पढ़ाने का तरीका भी कैसा है? साधारण, इसलिए मनुष्यों को दचता नहीं है। माइक वाइक लगा के बैठे, टिप टाप से बैठे,
آجو باجو چار آنکھ ادھر ادھر بیٹھے ہیں سنبھالنے والے, تو لوگوں کو جیسے سادھارن پڑھانے والا اور سادھارن ریت سے پڑھاتے ہیں تو جچتا نہیں. گاڈ فادرلی یونیورسٹی پھر ایسی ہوگی کیا؟ کیا پرشن پیدا ہوتا ہے؟ ان کو جچتا نہیں ہے کہ گاڈ فادرلی یونیورسٹی ایسی ہوگی. کیسی؟ اس لیے مرلی میں بولا ہے کہ یہ گھر کا گھر بھی ہے اور یونیورسٹی کی یونیورسٹی بھی ہے. ماؤنٹ آبو نہیں جاؤ, وہاں گھر دکھائی پڑتا ہے یا صرف یونیورسٹی دکھائی پڑتی ہے؟ وہاں گھر کی بھاشنا نہیں آتی. ایسے نہیں لگتا یہ کوئی فیملی ہے. باپ کہتے میں ہوں غریب لباس اور غریبوں کو ہی پڑھاتا ہوں. کیا غریبی کی حد کی یا بے حد کی؟ بے حد کے غریب کیسے ہوتے ہیں؟ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو, کھانے کے لیے روٹی پوٹی کچھ نہ ہو, وہ بے حد کے غریب. ہاں, ساہوکار اور غریب کا بے حد کا ارتھ ہوا جن کے اندر جان کا بہت ڈوز بھرا ہوا ہے بیسک نالج کا, اور ان کو بہت اہنکار ہے, نشہ کڑا ہوا ہے, وہ غریب نہیں ہوئے. وہ کیا ہو گئے؟ وہ ساہوکار ہو گئے. اور جنہوں نے گھر گست کے جیون میں رہتے ہوئے کچھ تھوڑا بہت جان اٹھایا, اتنا اہنکار نہیں چڑھا جان کا, نشہ نہیں چڑھا جو بہت اونچے اونچے ہو کر کے بولے. تو میں غریبوں کو ہی پڑھائی پڑھاتا ہوں. گھر گست میں رہنے والے, کیچڑ میں رہنے والے جو گرہستی ہیں ان کو کوئی اہنکار نہیں ہوتا. جو سادھو سنیاسی ہوتے ہیں ان کو تو اپنے گیان کا بڑا گھمنڈ رہتا ہے کہ ہم تو اتھارٹی ہیں, ہم کو کوئی کیسے کراس کرے گا. پھر ان کو گھمنڈ رہتا ہے کہ ہم تو پوتر ہیں, تو یہ بھی بہت بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. یہ نہیں پتا ان کو کہ کیسی ان کی پوترتا ہے, کائرتا والی پوترتا ہے یا شیروں والی پوترتا ہے. تو میں غریبوں کو ہی پڑھاتا ہوں, ساہوکاروں کو پڑھائی نہیں پڑھاتا ہوں. ساہوکار کو طاقت نہیں ہے پڑھنے کی. کیا جو جان رکھنے کا زیادہ ساہوکار ہوگا بیسک نالج میں, وہ اس پڑھائی کو اور پڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہوگی. دونوں کی بدھی میں تو محل ماری ہی بسی رہتی ہے کہ سونے کے محل ماریاں ہوں گے, یہ ہوگا ہیرے جواہرات ہوں گے. غریب یہاں ساہوکار بنتے ہیں اور ساہوکار غریب ایسا بن جائے گی. یہاں غریب ساہوکار بنتے ہیں, یہ یہاں جادوگری ہوتی ہے. جو غریب آتے ہیں یہاں وہ ساہوکار بن جاتے ہیں, اور جو ساہوکار ہوتے ہیں وہ ان کو بابا غریب بنا دیتا. رنگ کو راجا اور راجا کو رنگ بنانا ایک اس کا کام ہے, یہ باپ کا ہی کام. فائدہ ہے
दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। तो तुम उन स्थूल रत्नों की बात समझ लो। क्या कहा है? ये भी क्लियर कर दिया कि ये तो अपनी मनमत लगाते हैं, मनमत की बात नहीं है। ये तो अर्थ मुरली ही बताती है खुद कि बाबा कौन से गरीबों की और कौन से साहूकारों की बात करते हैं। हद की बात नहीं है, बेहद की बात। जो साहूकार है वो दान ले नहीं सकेंगे, उनकी बुद्धि में बैठे जाएंगे। वो अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते, उनके लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है। खूब मन मरतमा मिलता है, बड़े बड़े संगठन हैं, संगठन रूपी महल माड़िया हैं, तो उनके लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग। दूसरा देश कहते हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं है। क्या कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा? आप ही कह देते कि ये स्वर्ग गया। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमको स्वर्ग मिला हुआ, हमारे लिए यही स्वर्ग है, और दूसरी तरफ कहते हैं स्वर्ग पधार। तो जरूर अभी नरक ठहरा ना, स्वर्ग में कहाँ हो? परम कितने पत्थर बुद्धि है जो समझते नहीं, दो दो बातें करते हैं, कहते हैं बाबा हमारे लिए तो यही स्वर्ग स्थापन कर गया, ईश्वर जन्म हमारा शुरू हो गया। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? शरीर छोड़ा तो स्वर्ग पता, सूक्ष्म पतनवासी बन गए। तो ऐसी ऐसी दो दो तरह की बातें करते हैं, समझते नहीं नरक क्या है स्वर्ग क्या है। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उनको ही आकर के पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तब आकर के ताला खोले, और ताला लगाया किसने? माया। रावण कौन? एक मुरली ने प्रश्न किया, रावण कौन? जरूर कहेंगे यह गुरु लोग। ताला लगाने वाले कौन हुए? गुरुओं ने बुद्धि का ताला लगाया। और जिनका ताला लग गया उन्हों को बाप आकर पढ़ाते, ताला लगाने वालों को नहीं पढ़ाते। पढ़ाते किसको? जिनका बुद्धि का ताला लगा हुआ है उनको आकर के पढ़ाते। बाप जब आए तब आकर के ताला खोले, ऐसे नहीं बिना आए अपने आप ताला खुल जाएगा कि हमें याद करते रहेंगे और याद करते करते ताला अपने आप खुल जाएगा, नहीं। इसलिए बोला है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। ये माला की क्यों बोला? इसलिए बोला कि बेसिक नॉलेज में जो पढ़ाई दी गई, प्रैक्टिस बताई गई कि बिंदु को याद करो, उसमें जो पक्के हो गए, परिपक्व हो गए, तो वो आत्मा डायरेक्ट बाप से आकर के सीखती है। इसलिए कि उनकी बुद्धि का ताला खुल जाए। बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म तो बनती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो सूक्ष्म बुद्धि है उनकी बुद्धि का ताला खुला ही हुआ। वैज्ञानिक सूक्ष्म बुद्धि है या स्थूल बुद्धि है? वैज्ञानिक भी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि, लेकिन उनकी बुद्धि का ताला लगा हुआ है या खुला हुआ है? मेरी बुद्धि का ताला लगा हुआ है। इसलिए कितना भी सूक्ष्म बुद्धि है फिर भी दुनिया के विनाश का सामान तैयार कर रहे हैं। अपना कल्याण भी नहीं कर सकते, दूसरों का भी कल्याण नहीं कर सकते, विश्व का भी ध्वंस कर देते हैं। तो बाप जब आए तब ताला खोले, आए ना ऐसे नहीं बिंदी सिर्फ आए, बाप आए माने प्रैक्टिकल में आए, डायरेक्ट आए। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए क्या नहीं कि हमको बाप मिला है, मांगते कौन रहेंगे? जो भक्त होंगे वो मांगते रहेंगे। जिनको ये पक्का निश्चय हो गया कि हम बाप के बच्चे बन चुके हैं तो बच्चे को तो वर्षा अवश्य मिलता ही मिलता है। वो जरूरी नहीं कि बच्चा मांगेगा तभी वर्षा मिलेगा। कितना मोस्ट बेलेवेड बाबा जिसको भक्ति में याद करते थे, जिसे याद किया जाता है वो जरूर कभी आएगा भी ना। याद क्यों किया जाता है? जरूर उससे कुछ प्राप्ति हुई है तब तो कोई किसी को याद करता है। कोई सुख देते हैं तो उनको याद किया जाता है, दुख देने वाले तो कुछ कोई याद नहीं करता। तो दुनिया बाप को याद करती है, गॉड फादर को याद करती है, तो जरूर गॉड फादर ने सबको सुख दिया होगा। तो प्रैक्टिकल में आकर के सुख दिया होगा तब तो याद करते हैं। याद करते ही है फिर से रिपीट होने के लिए कि पहले हमको सुख दिया था अब फिर आकर के हमको सुख दो। बाप आकर बच्चों को ही समझाते, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है क्या था है? यानी बाहर वालों को बाबा नहीं समझाने जाएगा, बाहर वाले माने जो यहाँ बैठे हुए नहीं है वो बाहर वाले। ये भी दो अर्थ, हद का अर्थ और बेहद का अर्थ। जो भारतवासी हैं वो हैं अंदर वाले, जो कभी दूसरे देश में कन्वर्ट होकर के नहीं जाते, और जो दूसरे देश में कन्वर्ट होकर बाहर चले जाते हैं वो हुए बाहर वाले। तो बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है, क्या करते हैं, क्या कहते हैं। बच्चे तुम सब पापी तो हो, मैं ही आकर के पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो अब सिर्फ मुझे पतित पावन बाप को याद करो। सिर्फ किसे याद करो है? पतित पावन बाप को याद करो। कैसे पता चले कौन सी बिंदी पतित पावन? उस बिंदी में लिखा होगा क्या छोटे छोटे अक्षरों में कि ये बिंदी पतित पावन है? फिर कैसे याद करो? मुझे पतित पावन को याद करो है? कैसे पता चलेगा? अरे पतित में आएगा, बड़े से बड़े काम कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। तो पता तो चलेगा ना, कृष्ण की ग्लानी कब तक होती है और ग्लानी कब होना बंद हो जाती है? नारायण की कभी ग्लानी सुनी है क्या? शास्त्रों में नारायण की कोई ग्लानी है? नहीं। और नारायण बनने से पहले वो क्या था? कृष्ण था। तो कृष्ण काला होगा या गोरा होगा, जिसकी ग्लानी है? जरूर काला होगा तो उसकी ग्लानी भी होगी। जब तक कुछ न कुछ काला है तब तक उसकी ग्लानी जरूर होती है। और ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? एक सेकंड। तो वो एक सेकंड जब तक नहीं आता है तब तक क्या रहेगा? काला ही रहेगा। और जब तक काला रहेगा तब तक उसकी ग्लानी संसार में जरूर होगी। तो आप सिर्फ मुझे पति का पावन बाप को याद करो, मुझे सुप्रीम आत्मा को याद करो। क्या सुपर मेसी कैसे जाहिर होगी? कैसे पता चलेगी कि ये सुपर और ये नाम सुपर? नॉलेज से तो होगी, लेकिन नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल स्टेप्स के द्वारा ही तो पता चलेगा ये सुपर है और ये ना सुपर है। बिना प्रैक्टिकल पार्ट के जानेंगे? परमात्मा पार्ट प्रैक्टिकल से होगा तभी तो जानेंगे। सुप्रीम आत्मा कोई बड़ा लिंग बना हुआ है तो उससे तो जानने की बात नहीं। कोई इतना बड़ा लिंग तो होता नहीं। तो बड़ा लिंग बनाया इसका मतलब क्या हुआ? कि जो पार्ट कोई भी मनुष्य नहीं बजा सकता है, इतना बड़ा पार्ट, उतना बड़ा पार्ट वो बजाता है। कोई मनुष्य नाते इतना बड़ा पार्ट नहीं बजा सकता। सबसे जास्ती पार्ट किसका है? इस सच्चे रूपी रंगमंच पर शिव बाबा। वो तो 5000 वर्ष तो इस सच्ची पर ही नहीं आता, तो सबसे बड़ा पार्ट कैसे हो गया? हाँ, जो ज्योति बिंदु जिस साकार स्वरूप में आता है उसके लिए ये बात बताई कि उस स्वरूप के द्वारा वो संगम में ही सबसे बड़ा पार्टधारी बनता है। तो मुझे सुप्रीम आत्मा को याद करो, इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला तो कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो। क्या कहा? तुम्हारा हिसाब किताब जब पूरा होगा तो तुमको बिना मांगे स्वतः ही सब कुछ मिलेगा। हम आते ही तुमको देता रहता। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही। जो बालक बच्चे होते हैं वो झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ही इस तरह की बात है। 21 पीढ़ी, 20 पीढ़ी नहीं, 21 पीढ़ी वो बाप का वर्षा है। अगर 20 पीढ़ी है तो वो बाप का वर्षा पक्का पक्का बाप का वर्षा नहीं है। ये तो तुम जानते हो, जब नरकवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माओं भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम बाप से व्यापार करने के लिए आए। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उसे श्रद्धा भी कर खिलाते हैं। क्या कहा? ये बाप से व्यापार हुआ। प्रॉपर्टी किसकी है? बाप की ही प्रॉपर्टी ली और फिर खिलाया किसको? श्रद्धा खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। मन इस जन्म में जो भी प्रॉपर्टी मिली है वो मिली किससे है? बाप से ही तो मिली है। तो बच्चे दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, इस पर धर्मशाला आदि पर, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली है उनके लिए तो जरूर करना चाहिए, वो भी सौदा हो गया, तो वो सब है जिसमा की बात है। अभी बाप कहते हैं बीजी को चितवो नहीं, उल्टी सुलटी कोई बात नहीं सुनो, उल्टे सुलटे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो, इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। पहले बाप को तो पहचानो और बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राज्यों को नामी ग्रामी है, जितना याद करेंगे दैवी गुण धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। हर स्कूल की कोई न कोई एम ऑब्जेक्ट होती है, डॉक्टरी का स्कूल होता है एम ऑब्जेक्ट है, सर्जन बनाना है डॉक्टर बनाना है, वकालत का स्कूल होता है एम ऑब्जेक्ट होती है पढ़ने वाले की, एडवोकेट बनना है जज बनना है, यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। ऐसा पुरुषार्थ करके बनना है, ऐसे नहीं अगले जन्म में बनना है, यही पढ़ाई पढ़नी है और यही बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, किसको दुख नहीं है कोई भी प्रकार का दुख, दुखहर्ता सुखहर्ता बाप के बच्चे हो ना, तो कर्म से मालूम पड़ेगा कि कितने दुखहर्ता बने हो और कितने सुखकर्ता बने हो। बहुत नई नई दी आती 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के पीछे हो जाते, या? कोई 25-30 वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं और कोई सिर्फ 10-12 दिन के अभी ज्ञान में आए हैं और वो पीछे जा रहे हैं। तो बच्चों को फिर आत्मन बनाना है, माना जो 10-12 दिन वाले ज्यादा पीछे जा रहे हैं उनका फर्ज क्या है कि जो 20-25 वर्ष वाले डल जा रहे हैं उनको भी सीखा बनाए। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता कैसे बनेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो है ना, किसका? ब्राह्मणों का। अगर ब्राह्मण बने हैं तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी उनका मौजूद होना चाहिए। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये किसका टाइटल है? बिंदु सुप्रीम सोल का या जिसमें प्रवेश करता है उसका? ये प्रजा पिता का टाइटल है। तो ब्राह्मण जो नहीं बने हैं, यानी जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारा कोई इस संसार में प्रैक्टिकल में साकार में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी है, तो समझो वो अभी ब्राह्मण नहीं बना। इसलिए एक मुरली में बोला है, उन ब्राह्मणों से जाकर पूछो कि तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? तो क्या कहेंगे? सूक्ष्म बतन बता देंगे। तो तुम तुम्हारा बाप सूक्ष्म बतन में, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम भी बाप सूक्ष्म बतन है और जानते भी हैं, वो ये भी जानते हैं कि हमको सूक्ष्म बतन में ही भागना है। लक्ष्य भी दूसरों को यही देते हैं कि जैसे मम्मा बाबा चले गए वैसे वैसे हमको भी जाना है। लेकिन कंपिल में आना है तो कंपेल किए जाएंगे फिर आप ब्राह्मण बनने के लिए। ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, क्या शूद्र को देवता नहीं बन सकता? कौन बनेगा देवता? जो कंप्लीट ब्राह्मण नहीं बना है तो देवता नहीं बन सकता। ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन है प्योरिटी, पवित्रता। माना ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं तो आपस में क्या हो गए? भाई बहन। जब तक ये वाइब्रेशन पक्का नहीं हुआ तब तक बाप के पद के बच्चे भी नहीं, ये ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा। अगर विश्व की बादशाही का वर्षा लेना तो जो होकर जाती है उनका गायन करते रहते हैं, फिर जरूर वो आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं वो सब होकर के गए, इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, रक्षाबंधन आदि सबका राज बाप कर जाते रहते हैं। क्या ये ब्राह्मण क्या करता है रक्षाबंधन पर? रक्षा पुष्प बांधता है। ये कहाँ की यादगार है? इसी संगम युग की यादगार है। किसने रक्षा सूत्र बांधा है? ब्रह्मा बाप आकर के ब्राह्मणों को रक्षा के सूत्र में बांधते हैं, ये युक्ति बताते हैं कि तुम अपनी बुद्धि में निश्चय कर लो कि हम बाप के बच्चे हैं। तो जब बाप के बच्चे हैं तो भक्ति मार्ग में यादगार चलता है, मंदिर में जाके कहते हैं तुम मात पिता हम बालक, बात उसे कहते हैं। वो तो भक्ति मार्ग है, सिर्फ कहना कहना पर ना कुछ नहीं। और ज्ञान मार्ग में क्या विशेषता है? यहाँ तो प्रैक्टिकल करना पड़े। जब तक प्रैक्टिकल किया नहीं है तब तक फिर भी क्या कहेंगे, भगत या ज्ञानी? क्या कहेंगे? भगत ही भगत। भक्तों को तो वर्षा मिलने वाला नहीं। तो रक्षा बंधन आदि सबका राज बाप समझाते हैं। संगम युग में प्रैक्टिकल में रक्षा बंधन होता है, कोई प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बनता है ब्राह्मण, बड़े से बड़ा ब्राह्मण चोटी जो आकर के हमको रक्षा सूत्र बांधता है। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है, हैं? ऐसे नहीं पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। अभी तक तो है बने नहीं है। मनता वाचा कर्मणा कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। अगर तुम बाप के बच्चे हो तो बनना जरूर है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कलप कलप जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। क्या कर एक्यूरेट चलते भी कौन रहते हैं? अगर नहीं लिया होगा तो नहीं आएंगे, तो लेकिन एक्यूरेट नहीं चलेंगे भाई बहन बनकर, कुछ न कुछ गड़बड़ी करते रहेंगे। तुम भी साक्षी होकर के देखते हो, बाप दादा भी साक्षी होकर के देखते हैं। ये कहाँ तक ऊंच पद पा सकते हैं, इनके करैक्टर्स कैसे हैं? टीचर को तो सब मालूम रहता है ना, कितने को आत्मन बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में ये याद रखना चाहिए ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है नॉलेज के लिए, वो है ह्यूमंस के लिए हद की यूनिवर्सिटी, और ये है बेहद की यूनिवर्सिटी। किसके लिए? रूहानी बच्चों के लिए। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती है। क्या था? दे अभिमानी सांडों की तरफ बाप की दृष्टि भी नहीं जाती, किसकी तरफ जाती है? आत्माओं की तरफ। सब का कल्याण करना है, वापस ले जाना है, किसका कल्याण करना है? आत्माओं का, आत्मिक स्टेज वालों का बाप को कल्याण करना है। जिन्होंने ये प्रैक्टिस पक्की नहीं की कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, बेसिक नॉलेज की पूरी पढ़ाई अब तक भी नहीं पढ़ी कि मैं बिंदु बाप का बिंदु, बच्चा हूँ, तो उनका कल्याण बाप को, बाप को नहीं करना, उनका कल्याण कौन करेगा? बताए ना, उनका भी प्रबंध करना है, जरूर कोई न कोई उनका भी कल्याण करने वाले बाप हैं, तो सबका कल्याण करना है, आत्माओं का वापस ले जाना है।